पिछले चंद दिनों से हज़रत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की बताई हुई सालिक की जो शेख के साथ नस्बतें हैं उसका तذکرہ हो रहा है। पिछली मजलिस में हमने ये तذکرہ किया कि नस्बतें इल्काई और नस्बतें इस्लाही वाले सालिक में फ़र्क क्या। हज़रत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि सबसे कमज़ोर नस्बत नस्बतें इनकासी है और निस्बत इन इक्कासी वाला सालिक जो है वो शेख के पास आता भी थोड़ा है, मामूलात में भी नागा है, जिंदगी में गुनाह भी है, तो उसका शेख के साथ ताल्लुक तो है, उसने बैत तो की है, मगर उसका शेख के साथ इस्लाह का ताल्लुक नहीं है। फिर एक सालिक है और उससे थोड़ा मजबूत नस्बत वाला, और उसको हजरत ने फरमाया कि ये नस्बत इल्काई वाला सालिक है, और नस्बत इल्काई वाला सालिक वो है जिसकी जिंदगी में मामूलात भी है, जिसकी आमतौर पे घरेलू जिंदगी भी नेकी वाली, उसकी जाहिरी शक्ल सूरत भी सुन्नत वाली, तो वो नेक आदमी है, मामूलात भी करता है, शेख की सोहबत में आता जाता भी है। तो फिर इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है। मगर हजरत ने फरमाया कि नहीं, इससे भी एक मजबूत नस्बत है और उसको कहते हैं नस्बत इस्लाही, और नस्बत इस्लाही वाला सालिक वो है जिसकी जिंदगी में नेकी तो है मगर इसको बातिन के अमराज की इस्लाह भी नसीब हो जाती है। तो निस्बते इस्लाही वाला सालिक जो है उसका गुमान और उसका मकसद शेख के साथ ताल्लुक का बातनी अमराज की सफाई है। इसके मुकाबले में निस्बते इल्काई वाला जो सालिक है वो शेख के साथ इसलिए ताल्लुक रखता है कि उसको नेकी पसंद है, तो जहां उसने और बहुत सारे नेक लोगों के साथ दोस्ती रखी है, मोहब्बत रखी है, शेख भी एक नेक आदमी उसे नजर आते हैं, तो उसने कहा इनके साथ भी दोस्ती मोहब्बत जरूर हो, मगर उसका मकसद बातिन की सफाई नहीं है, या उनका ये मकसद नहीं है कि शेख की सोहबत में रह के और मैं कोई बहुत ही दायमी हुजूरी हासिल कर लूंगा, या नमाज की लज्जत तक पहुंच जाऊंगा, या हर वक्त की इबादत मुझे नसीब हो जाएगी, या तकवा के किसी आला मकाम पे पहुंच जाऊंगा, और ये निस्बत इस्लाही वाला सालिक जो है वो इन तमाम चीजों के लिए आया होता है। इसलिए गोय के दोनों की शक्लो सूरत एक ही जैसी, दोनों की पगड़ियां और दोनों के जो लिबास है वो एक जैसे होंगे, मगर बातिन में जमीन आसमान का फर्क होगा। इसीलिए निस्बत इस्लाही वाला सालिक जो है उसका शेख के साथ जो वालेहाना ताल्लुक है वो भी ज्यादा होता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी नेमत के लिए हाजिर होता है, और जो उसका शेख के साथ ताल्लुक होता है वो किसी और के साथ नहीं होता। निस्बत इल्काई वाला सालिक उसका ये ताल्लुक हर एक के साथ होता है, तो किसी दिन शेख मयस्सर नहीं भी है तो भी उसके दिल में कोई गम नहीं होगा। निस्बत इस्लाही वाला सालिक तो शेख कभी मयस्सर ना हो या कोई दूर हो जाए तो उसके ऊपर गमों का पहाड़ टूट आता है। चुनाचे हज़रत ख्वाजा मासूम रहमतुल्लाह अलैह के हालात में लिखा है कि एक मरतबा वो सफर पे तशरीफ ले गए तो सालिकीन जो है उनके ऊपर तो बिल्कुल एक परेशानी का आलम आ गया, किसी ने क्या दास्तान लिख दी और किसी ने क्या दास्तान लिख दी, तो पता चला कि ये निस्बत इस्लाही वाला सालिक और निस्बत इल्काई वाला सालिक जो है उसमें बड़ा फर्क है। तो गो के दोनों नेक हैं, दोनों के चेहरे मोरे सुन्नत वाले हैं, दोनों अमाल भी करते हैं, मगर शेख को भी इस निस्बत इस्लाही वाले सालिक में ही ज्यादा इंटरेस्ट होता है, क्योंकि शेख को भी ये पता है جی آگے دین کا کام کرنے والا جو شخص ہے وہ یہ نسبت اصلاحی والا ہی ہے، اور سالک کو بھی یہی بتایا ہے اصلاحی والے سالک کو کہ جتنا میں قریب ہوں گا اتنی جلدی اصلاح نصیب ہوگی، اتنا جلدی اللہ کا قرب ہوگا، تو اس لیے بھی وہ والہانہ تعلق رکھتا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ صرف اس کو اصلاح کی باتیں شیخ کرتے ہیں، اس کی ہر عمل پہ نظر بھی رکھتے ہیں، بلکہ پھر شیخ اس کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں. اور یہی نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت. تین صحابی تھے، تینوں نوجوان صحابی، تینوں کا نام عبداللہ، اور تینوں خدمت کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہیں. ایک تھے عبداللہ ابن مسعود، ایک تھے عبداللہ ابن عباس، اور تیسرے تھے عبداللہ ابن عمر. اور نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کے لیے تہجد کی نماز میں نام لے کے دعا فرمایا کرتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو بڑا مقام عطا فرمایا. عبداللہ ابن عباس امام المفسرین بن گئے، عبداللہ ابن عمر امام المحدثین بن گئے، عبداللہ ابن مسعود جو ہے وہ امام الفقہا بن گئے. تو یہ پکی بات ہے نسبت اصلاحی والا سالک جو ہے صرف یہ نہیں کہ اس کو شیخ سے بڑا خاص تعلق ہے، شیخ کو بھی اس سے بڑا خاص تعلق ہے. چنانچہ حضرت سراج الدین رحمت اللہ علیہ سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی خانقاہ میں ایک بہت ہی ان سے چاہنے والا تعلق رکھنے والا ایک سالک تھا، بڑی محبت رکھتا تھا حضرت سے، بڑی خدمت کرتا تھا. اس کا نام تھا فتح علی، نام تو فتح علی تھا. اب جو خانقاہ پہ آنے والے سالک ہیں، ان کے کپڑوں کو دھونا، ان کا کھانا لگانا، ان کا خیال کرنا، صفائیاں کرنا، یہ سارے کام کرتا تھا، بلا معاوضہ کرتا تھا. اور بس حضرت کی خانقاہ پہ پڑا تھا، تو نام فتح علی تھا. کیونکہ ایسے خدمت گزار سا تھا تو لوگوں نے پھتو کہنا شروع کر دیا، تو پھتو مشہور ہو گیا کہ یہ پھتو ہے. اب کوئی کہ پھتو یہ کر لو، پھتو وہ کر لیں، حضرت بھی کہتے تھے پھتو سے یہ کام کروا لو اور پھتو سے وہ کام کروا لو. اتنا سارا خدمت کرنے کے باوجود بھی خدمت کا جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا، بلکہ نئی نئی طریقے خدمت کرنے کے یہ سوچتا. اس نے دیکھا کہ حضرت کی خانقاہ جہاں ہے وہاں قریب میں ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ سے پانی آتا ہے، اور بہت ساری خانقاہ کی زمین جو ہے اس میں پانی ٹھہرا ہوا ہوتا ہے. تو بار بار اس کے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ کسی طرح سے یہ پانی اگر یہاں سے ہٹ جائے تو خانقاہ کی یہ زمین واپس استعمال کے قابل ہو جائے گی. تو ایک دن اس کے دل میں یہ خیال آیا، اس نے جا کے حضرت سے کہا کہ حضرت اس پہاڑ کو اگر تھوڑا سا کاٹ دیں گے نا تو پانی کا رخ دوسری طرف چلے جائے گا اور یہ زمین ہمیں مل جائے گی. تو اتنے سالکین جو آتے ہیں ان کے لیے کچھ رہنے سہنے کا بندوبست بھی بہتر ہو جائے گا. نے فرمایا ہاں آئیڈیا تو اچھا ہے، بس اتنی اجازت کی دیر تھی کہ یہ فتو صاحب جو ہے انہوں نے خدا لیا اور پہاڑ کاٹنا شروع کر دیا. پہاڑ کو کاٹا جاتا ہے آج کے زمانے میں؟ تو پھر بھی سوچ سکتے ہیں کہ مشینوں کا دور ہے، کدال سے پہاڑ کہاں کاٹا جاتا ہے؟ اگر جذبہ ہے، خدمت کا جذبہ، والہانہ تعلق جس کو کہتے ہیں. دوسرے سالکین مذاق بھی اڑاتے تھے کہ پتو یہ کوئی پہاڑ کاٹنے کی چیز ہے، مگر تھوڑا تھوڑا کر کے جذبات کی وجہ سے کاٹتے کاٹتے ایک وقت ایسا واقعی آ گیا، پہاڑ اتنا کٹ گیا کہ اوپر سے آنے والا پانی جو ہے اس کا رخ دوسری طرف ہو گیا. کچھ مشائخ نے جا کے اس جگہ کی جو ہے وہ زیارت بھی کی کہ دیکھو یہ خدمت کا ایک بہترین مثال، بہترین نمونہ. پہاڑ دوسری طرف ہو گیا اور جگہ جو ہے واپس مل گئی. حضرت نے ارادہ فرمایا کہ جو سالکین آ کے ٹھہرتے ہیں ان کے لیے کچھ کمرے بنایا گیا، کچھ مستریوں کا، مزدوروں کا انتخاب کیا گیا، इन मिस्त्री मजदूरों के साथ भी फत्तू साहब लगे हुए हैं। उस इलाके में दोपहर में बहुत गर्मी हो जाती थी, गर्मियों के दिनों में तो मजदूरों का काम करने का वक्त या तो फजर के बाद होता था या असर के बाद होता था। ये फत्तू साहब जो है ये लगे रहते हैं इनके साथ, जोहर के वक्त भी जब सारे सो जाते हैं तो उस वक्त ये गारा बना लेते कि चलो ये उठेंगे तो गारा तैयार हो। और गर्मियों का जो महीने हैं उनमें सख्त गर्मी होती है, तो एक मर्तबा गर्मी के महीनों में दोपहर के वक्त हजरत अपनी बालकनी में तशरीफ लाए तो देखा कि सारे जितने सालिकीन थे सब भी सो रहे हैं, मजदूर भी सो रहे हैं, मिस्त्री भी सो रहे हैं। ये एक फत्तू है, ये गारे के अंदर जंपे लगा रहा है गारे को मिक्स करने के लिए। हजरत अपने खादिम को कहा कि जाओ फत्तू को बुला लो। खादिम गया फत्तू के पास और कहा कि हजरत आपको बुला रहे हैं। फत्तू थोड़ा सा डर गया कि शायद मैंने कोई गलती कर दी है, इस वक्त हजरत कभी नहीं बुलाते। उसने कहा कि हजरत से अर्ज करो कि बस मैं आ रहा हूँ, कपड़े भी सही नहीं है, गारा भी सारा लगा हुआ है, तो थोड़ी देर में आता हूँ। उसने कहा मैं जरा रिलैक्स हो जाऊँ, जहनी तौर पर तैयार हो जाऊँ डांट खाने के लिए। खादिम वापस गया कि जी ये फत्तू कह रहा है कि जी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। फरमाया नहीं, जिस हालत में है उस हालत में भी आए। ये जो जाके कहा तो उसकी तो और जान निकल गई, आज तो डांट पक्की है। रहे कि जिस हालत में हो उस हालत में आओ। अब वो इसी तरह लूंगी बांधी हुई है, गारा लगा हुआ है, पूरा जिस्म लिथड़ा हुआ है मट्टी गारे के साथ, हजरत की खिदमत में आया। हजरत के करीब हुआ तो हजरत ने उसको सीने से लगा दिया और काफी देर तक सीने से लगा के रखा। और फिर फरमाया कि अल्लाह ने दिल में ये बात डाली कि बस ये वक्त है कि ये निस्बत आप में मुंतकिल कर दी जाए, तो आपको मेरी तरफ से इजाजत व खिलाफत है। तो ने कहा क्या, ना दीन पड़ा हुआ ना दुनिया पड़ा हुआ, तो खादिम सारे जो लोग आते हैं उनका ये निस्बत कहाँ। तो उन्होंने हजरत को बताया कि हजरत मैं तो इस तरह कहूँ, आपको बताया ना। उसने फरमाया भाई ये कोई हमारे घर की चीज है, अल्लाह की तरफ से इशारा है। अब निस्बत इस्लाही वाला सालिक था और इस्लाह का मामला मुकम्मल हजरत की नजर में हो चुका था, और हजरत ने फरमाया कि बस ये इजाजत तो खिलाफ। अल्लाह की शान इस इजाजत तो खिलाफत के अंदर, इस निस्बत के हासिल के अंदर इतनी बरकत थी। बहुत सारे अकाबरी ने लिखा कि फिर ये जहां भी बैठता लोगों में दीन की बात करता, लोगों के दिल पे असर होता। कभी कोई दुआ के लिए कहता या हाथ उठाता, अल्लाह ताला इसके हाथों को रद्द नहीं फरमाते। आहिस्ता आहिस्ता लोगों के अंदर भी एतकाद आना शुरू हो गया। अब लोगों ने फत्तू कहना छोड़ दिया कि जी हजरत के खलीफा है, और फत्तू की जगह लोगों ने साईं फतेह अली कहना शुरू कर दिया। हजरत हाफिज गुलाम हबीब साहब रहमतुल्लाह अलैह चकवाल वाले बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, वो फरमाते हैं कि एक साल हज पे गया तो मदरसा सौलतिया के जो बेसमेंट में उलमा का इंतजाम हुआ करता था, बहुत सालों तक तीन चार दिहाइयों तक ये मामला रहा है वहां पे। तो फरमाते हैं कि वहां हाजिरी हुई, नीचे बेसमेंट में 200 से ज्यादा उलमा का इंतजाम था, सारे जमीन पे उलमा, बीच में एक चारपाई ऊपर करके लगाई हुई थी और वहां एक बुजुर्ग लेटे थे, और वो बुजुर्ग सारे उलमा की तवज्जो का मरकज था। हर बंदा उनकी खिदमत कर रहा है, हर बंदा उनसे मोहब्बत कर रहा है। हजरत फरमाते हैं कि मैंने करीब होके देखा तो ये वही फत्तू साई फतेह अली रहमतुल्लाह अलैह। तो ये निस्बत इस्लाही, इससे सिर्फ इंसान को इस्लाह हजरत के अल्फाजों से तवज्जो से नहीं बल्कि मशाए की दुआएं भी ऐसे ही सालिक के लिए ज्यादा होती हैं। अल्लाह ताला हमें भी ये इस्लाह नसीब फरमाए। आखिर दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ثاقبا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.